अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास प्राइमरी क्यूटेनियस CD30 पॉजिटिव जो लिम्फोमास थे ना, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि इसमें हमारे पास तीन तरह की मतलब डिजीज़ेज है। एक तो लिम्फोमेटोइड पेपिलोसिस है, और जो दूसरा उसका एंड है वो है CD30 पॉजिटिव एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमास, और एक उसके बॉडी लाइन होते हैं, ठीक है। तो जो एनाप्लास्टिक टी सेल लिम्फोमा है ना, इसका मतलब ही ये देखो कि वो वाले क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमास जिनके अंदर एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं, और उनकी जो एनाप्लेजिया या उनके अंदर साइटोट्रिकल एटाइपिया का जो लेवल है ना, वो लिम्फोमेटोइड पेपिलोसिस से कहीं ज़्यादा होता है। तो बाय डेफिनेशन वी कैन से कि प्राइमरी क्यूटेनियस CD30 पॉजिटिव एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमास या फिर ब्लास्टिक लिम्फोमास जो है ना, वो वाले ट्यूमर्स होते हैं विच कंप्राइजेस प्रीडोमिनेंटली ऑफ दो CD30 पॉजिटिव टी ट्यूमरस सेल्स इन द इन्फिल्ट्रेट, जो मेजॉरिटी यही होते हैं। जो लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस में हमने पढ़ा था हिस्टोपैथोलॉजी में, उसके अंदर देखो टी सेल्स भी थे, न्यूट्रोफिल्स भी थे, इओसिनोफिल्स भी थे, और कहीं कहीं पे स्पार्स टी लिम्फोसाइट्स थे, कहीं पे ज़्यादा पैक्ड सेल्स थे, लेकिन इनमें जो डर्मल इन्फिल्ट्रेट होता है ना, वो प्री डोमिनेंटली CD30 पॉजिटिव ट्यूमरस सेल्स होते हैं, जो मोस्टली टी सेल एनर्जन होते हैं, और इसके अंदर दूसरे सेल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, यही प्री डोमिनेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इसको माइकोसिस फंगोइडी से इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें ना तो क्लिनिकली और ना ही पैथोलॉजिकली MF के फाइंडिंग्स आते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है ना, क्लिनिकली हमें नोड्यूल्स मिलते हैं, कोई प्लाक्स कोई पैचेस नहीं मिलते, और हिस्टोलॉजिकली भी इसके अंदर ना तो प्रोट्रूअर माइक्रोपिसेस होते हैं और ना ही एपिडर्मोट्रोपिज्म होते हैं, विच आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ माइकोसिस फंगोइडीज, ठीक है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी में इसमें लिखा हुआ है कि ये वाले जो ट्यूमर है ना, इसमें कहीं कहीं पे एलेलिक लॉस होता है, कहीं पे क्रोमोसोमल गेन होता है। तो मतलब कि क्रोमोसोम लेवल पे कहीं पे कोई जीन्स लॉस हो रहे हैं, कहीं पे गेन ऑफ फंक्शन होता है, इस वजह से इसके अंदर एनाप्लेजिया आ जाता है। पैथोलॉजी में डेंस डर्मल इन्फिल्ट्रेट होते हैं विच आर प्रीडोमिनेंटली ऑफ CD30 पॉजिटिव सेल्स। जब हम सेल्स को एनालाइज करते हैं तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि टी सेल एनर्जन है, क्योंकि इसके अंदर टी सेल एंटीजन्स होते हैं। उसके अलावा जब हम TCR जीन रीअरेंजमेंट्स एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें टी सेल क्लोन्स नज़र आते हैं, तो फिर इससे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो है ना CD30 पॉजिटिव टी सेल एंटीजन वाले जो है ना, वो टी सेल लिम्फोमास हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई एपिडर्मोट्रोपिज्म नहीं होता, जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द MF। फिर इम्यूनोफिनोटाइपिंग के अंदर कुछ जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, लाइक CD30 पॉजिटिव के अलावा CD4 पॉजिटिव होता है, CD8 पॉजिटिव होता है, और कौन से नेगेटिव होते हैं, CD2 नेगेटिव, CD5 नेगेटिव, CD3 नेगेटिव, CD15 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा इसको जो है ना, हमने माइको इसमें लिम्फोमेटोइड पेपिलोसिस से डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या फीचर्स हैं, कि एक तो इसके अंदर शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और जनरली जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस के अंदर वो MUM1 और TRAF1 एक्सप्रेस करते थे, वो इसमें ये ट्यूमर सेल्स ये सरफेस एंटीजन्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में मेनली ये एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है। साइट ऑफ प्रीडिलेक्शन मोस्ट कॉमनली ट्रंक है, लेकिन लिम्स पे भी लेशंस आ सकते हैं, और लेशन क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, कि कोई प्लाक्स कोई पैचेस नहीं होते। उसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा क्यूटीनियस फीचर्स कोई भी नहीं होते, लेकिन ये कि कभी कभी इसके अंदर इसका एक वेरिएंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है ना फर्स्ट जो ड्रेनिंग नोड होता है ना, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, अदरवाइज सिस्टमिक डिजीज़ इसके अंदर नहीं होती है। और दूसरा ये कि अगर एक्सटेंसिव रीजनल डिजीज़ है ना, तो फिर उसमें डिजीज़ प्रोग्रेशन हो सकती है। क्लिनिकल वेरिएंट्स में इसके दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स, एक तो मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे पैल्पेबल लीजन्स होते हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड होता है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये रेयर वेरिएंट है। इसके अलावा एक और इसका वेरिएंट है जिसके अंदर लार्ज अल्सरेटिव नोड्यूल्स हमें मिलते हैं बटक्स पे और थाइस पे, विच मे शो वेरिएबल डिग्री ऑफ स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। तो ये जो बॉर्डर लाइन केसेस है ना, जो एनाप्लास्टिक वाले टी सेल लिम्फोमा और लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस के बीच के होते हैं, उनको कहते हैं बॉर्डर लाइन केसेस, एंड दे आर नेम्ड एज रिग्रेसिंग एटिपिकल हिस्टियोसाइटोसिस, सही है। ये भी टी सेल एनर्जन होते हैं, और TCR जीन एनालिसिस से हमें पता चलता है कि दीज आर टी सेल एनर्जन। DDs में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम द सिस्टमिक क्यूटेनियस लिम्फोमास विद सेकेंडरी क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, जिसके लिए फिर हम इसकी जो है ना पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे विद इट CT स्कैन और बोन मैरो असेसमेंट टू सी के बॉडी में कहीं और लिम्फोमा है जिसने सेकेंडरी क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट की। फिर डिजीज़ कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में ये कि अच्छी प्रोग्नोसिस है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसमें तकरीबन 90% है। मैनेजमेंट में हमने क्या करना है कि अगर सिंगल या मल्टीपल नोड्यूलर लीजन्स हैं एक जगह पे हैं तो उसमें हम एक्सेशन भी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना हमारे पास सिस्टमिक थेरेपी में चॉप थेरेपी या मीथोट्रेक्सेट हमें बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी उन केसेस में जिसमें एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में तो उसमें वैसे भी नहीं होती ना। अगर फिर भी उसका जो रेयर वेरियंट जिसके अंदर एक या दो नोडल इन्वॉल्वमेंट है उसमें भी हम रेडियोथेरेपी कर सकते हैं।